ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्याम् जमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्वितः क्षिपन्तघं महदपि वेणु गुल्ममिवानलः तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्याम् जमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरः धर्मज्ञः श्रद्धयान्वितः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणु गुल्ममिवानलः।
तपसा तपस्या या भौतिक भोग का स्वेच्छा से तिरस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य द्वारा समेना मन को वश में करने से च तथा दमेना इंद्रियों को पूरी तरह बश में करने से च भी त्यागेना स्वेच्छा से उत्तम कार्यों के लिए दान देने से सत्यता से शौचाभ्याम तथा अपने आप को भीतर बाहर से स्वच्छ रखने के विधानों का पालन करने से यमेना साप देने तथा हिंसा से बचने से नियमेना भगवान के नाम का नियमित कीर्तन करने से वा तथा देहवाक बुद्धिजम शरीर बाणी तथा बुद्धि के द्वारा संपन्न धीरा धीर लोग धर्मज्ञ धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञान से पूरित श्रद्धयान्विता श्रद्धा से युक्त क्षिपन्ति नष्ट करते हैं अघम सभी प्रकार के पाप कर्मों को महतपि यद्यपि अति महान तथा निंदनीय वेणुगुल्मम बांस के वृक्ष के नीचे की सुखी लतर इव सदृश अनल अग्नि। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और अगह पतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सच्चा स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान हैं, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, यद्यपि उनकी जड़ें फिर से समय पाकर उगने के लिए शेष रह जाती हैं। तात्पर्य स्मृति शास्त्र में तप की व्याख्या इस प्रकार हुई है, मनस्येन्द्रियाणां च एकाग्र्यम् परमं तपः। मन तथा इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उनकी पूर्ण एकाग्रता तप कहलाती है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र करना चाहिए। यह उच्च कोटि का तप है। ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। मनुष्य को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, न यौन जीवन की चर्चा चलानी चाहिए, न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, न स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, न उनसे घनिष्ठता पूर्वक बातें करना चाहिए, न संभोग में रत होना चाहिए, न यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना या उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए, बातें करना तो दूर रहा। इसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी एकांत में स्त्री से बातें करता है तो स्वाभाविक है कि बिना जाने यौन जीवन की संभावना बनी रहती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसके विपरीत अभ्यास करते हैं। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वह बहुत आसानी से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है, सत्य बोल सकता है आदि आदि। किंतु प्रारंभ में उसे जीव तथा खाने पर नियंत्रण करना होगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीव को नियंत्रित करके दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सेवन मुखे ही जिह्वा दोषमेव अस्फुरत्यदः। जीव को वश में किया जा सकता है यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, कृष्ण से संबंध विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर न बोले तथा ऐसे किसी वस्तु का आस्वादन न करे जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो। यदि वह इस तरह जीव को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचर्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली विधियां स्वतः ही पीछे पीछे चलेंगी। अगले श्लोक में बतलाया जाएगा कि भक्ति का मार्ग परम पूर्ण है, अतएव कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठतर है। वेदों से उदाहरण देते हुए श्री वीर राघव आचार्य बतलाते हैं कि जितनी पूर्णता से हो सके व्रत रखना तपस्या में सम्मिलित है। तपस्या नाश के न श्री रूप गोस्वामी ने भी अत्याहार यानी अत्यधिक भोजन करने को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधक बतलाया है। यही नहीं, भगवत गीता में 6 अध्याय श्लोक 17 में कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य जोगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है। श्लोक 14 में धीरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहे। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के श्लोक 14 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मत्रा स्पर्शास्तु कौन्ते अशीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांत तीक्षा स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भौतिक जगत में अनेक उत्पात आते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक। जिस व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों में इन उत्पातों को सहन करना सीख लिया है वह धीर कहलाता है। हरे कृष्ण।
जय श्री प्रभुपाद। जाकी छटा ली। तो हम लोग मानव शरीर प्राप्त किए हैं, इस मानव शरीर में एक ही लक्ष्य रखना है, किसी भी प्रकार से हमें इस प्राकृत जगत से पार होकर भगवान को प्राप्त करना है। इसके लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं और महाराज परीक्षित यहां प्रश्न किए हैं सुखदेव गोस्वामी से। बहुत बड़े राजर्षि राजा में प्रश्न कर रहे हैं कि क्या करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु से बच जाएगा, विशेष करके नरकों के दुख से बच जाएगा। दो ही गति है इस संसार में, या तो नरक में जाना पड़ेगा और नहीं तो ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति का अर्थ है वैकुंठ में जाना। दो में से एक गति होगी, या तो हम मुक्त होंगे और नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। और यह इससे मुक्त होने का एक ही चांस है, मनुष्य शरीर। अगर इसमें हम मुक्त हुए, भगवान के पास चले गए, तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो बहुत बड़ा घाटा है। फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी, बारंबार जन्म मृत्यु का प्रवाह चलता रहेगा। इस मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, जन्म के बाद फिर मृत्यु, फिर जन्म। तो इसको संसार प्रवाह कहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि इस शरीर में हम भगवान की भक्ति करके और उनके पास चले जाएं, भगवान के धाम में उनके पार्षद बन जाएं, और नहीं तो जन्म मृत्यु में इस संसार में रहना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज कर्म से कर्म को काटा जा सकता है, तो कुछ पाप हो जाए तो प्रायश्चित करे तो पाप कट जाएगा, लेकिन महाराज परीक्षित नहीं किए, कहे कि नहीं ये तो व्यर्थ है। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान मार्ग की बात कहा, ज्ञान होना चाहिए। जब वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा किसी को, भगवान का ज्ञान होगा, तो उसी से पाप खत्म नहीं करेगा, या इस तरह पहले का किया हुआ पाप नष्ट हो जाएगा तो नरक नहीं जाएगा। लेकिन इस पर भी महाराज परीक्षित नकारे, नहीं यह भी होना कठिन है, कोई और उपाय बताइए। तब श्री लक्ष्मीदेव गोस्वामी ने कहा, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कार्चनेन निहारम्यो भास्कर। बिरले ऐसे लोग हैं जो केवल भक्ति के द्वारा सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे सूर्य का उदय कुहरा को नष्ट कर देता है। तो इससे उत्तर के पहले भी ये बता रहे हैं दो श्लोक कैसे पाप कटेगा। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम जमेन नियमेन च। भगवान ने श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंध में 12 यम बताया है और 12 नियम। उसमें भी पहले वे अहिंसा को ही रख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब बता रहे थे संसार में सब नियम, तो सबसे पहले उन्होंने नो मीटिंग इसी को रखा, अहिंसा परमो धर्म। श्रील प्रभुपाद ने देख लिया कि संसार में खाने के लिए लोग बहुत हिंसा कर रहे हैं। खाने में किसी जीव का मांस खाना ये बहुत बड़ी हिंसा हुई ना। अगर कोई पशु को मारता है तो केवल वही हिंसक नहीं है, जो ढोता है मांस को, मांस पकाता है, बेचता है, ये सभी घातक हैं, सभी को पाप लगता है। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि लोग खाते ही हैं और खाने में मांस का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्होंने इसको सिखाया अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा को पहला यम बताया गया है। भगवान भागवत में कहते हैं अहिंसा सत्यमस्तेयम् असंगो हरिर संचय। यम है इसको रूल कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। जब मैं दीक्षा के लिए खड़ा हुआ प्रभुपाद के सामने, तो श्रील प्रभुपाद जी पूछे व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो मैं तो बिल्कुल चकित हो गया, मुझे समझ में नहीं आया रूल्स रेगुलेशंस क्या। मैं कह दिया कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रभुपाद जी और भक्तों को देखने लगे, तो वो लोग संकेत किए फोर रूल्स रेगुलेशन, फोर कहे तो मैं समझ गया। तो फोर में ये पहला है नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण नहीं करना। तो मैं श्रील प्रभुपाद से बाद में पूछा कि रेगुलेशन क्या है, आप कहे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलो, तो रूल्स तो समझ रहा हूं लेकिन रेगुलेशन नहीं समझ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ये है यम रूल्स और रेगुलेशन का अर्थ है नियम। तो भगवान ने इन शब्दों का प्रयोग किया है श्रीमद् भागवतम में। वे स्वयं धब से कहते हैं यमान अभिक्षमम सेवेत नियमान मत पर क्वचित। यम का पालन निश्चित करना चाहिए सब समय, सबके लिए जरूरी है, और नियम का पालन वह भी जरूरी है, लेकिन सभी समय में सभी देश में सबके लिए एक ही नियम नहीं है। तो ये अहिंसा नो मीट ईटिंग ये सबके लिए है। अगर भारत में है तब भी नहीं खाना चाहिए, अमेरिका में है तब भी नहीं खाना चाहिए, या 2012 में नहीं खाना, 2014 में नहीं खाना, कभी भी नहीं खाना, यह सार्वभौम नियम है सारी पृथ्वी पर सभी मानवों के लिए। ऐसा नहीं है कि यहां चावल खा रहे हैं और कहीं जा करके मांस खाने लगे, नहीं खाना चाहिए। ये नो मीट ईटिंग सब समय के लिए है। अहिंसा, श्रील प्रभुपाद जी एकांत में इन सबको बताते थे कि कैसे श्रीमद् भागवतम में ये सब चीजें हैं। तो मैं रेगुलेशन को पूछा तो उन्होंने बताया कि नियम और रूल्स मतलब यम, यम का पालन सबको करना चाहिए सब समय सब जगह किसी भी परिस्थिति में। अगर भक्त है तो ऐसा नहीं है कि अभी प्रसाद खाए और डॉक्टर बता दे तो फिर अंडा खाने लगे, कभी नहीं। न मीट ईटिंग पहला नियम प्रभुपाद जी का। और भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अहिंसा हिंसा न करना। और सत्यम सत्य भाषण, सच सच बोलना, यह जम है नियम है। अस्तेयम किसी के अनुमति के बिना उसकी किसी भी वस्तु को नहीं लेना, यह है अस्तेय, चोरी नहीं करना। अस्तेयम असंगम और असंगम कहीं पर अटैचमेंट न होना, किसी घर में किसी व्यक्ति में किसी परिस्थिति में कहीं भी आसक्ति न होना। असंचय और संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, उससे दुख होता है। अगर भी कोई व्यक्ति अधिक पैसा संग्रह करेगा, अधिक वस्तु संग्रह करेगा तो उसे चिंता होगी, उसका मन अशांत होगा, इसलिए असंचय संग्रह नहीं करना चाहिए। यह भी एक जम है। ये सब बातें आ जाती हैं नो गैम्बलिंग में। और सत्य भी उसी में आ जाता है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति कभी सच नहीं बोल सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह से कई जम को मिला करके चार बनाया है। यहां पर ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग है। श्रील प्रभुपाद जी के नियमों में जो नो इलिसिट सेक्स नियम है, यह ब्रह्मचर्य का ही द्योतक है। सभी को सब समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वो चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी ने कल लिखा इलिसिट, इलिसिट का क्या अर्थ है अवैध और लिसिट क्या क्या अर्थ है। किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी काल में इस व्रत का नाश नहीं होना चाहिए। गृहस्थों को भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए ये व्यवस्था है, अपनी विवाहिता पत्नी के साथ संग करना, लेकिन कभी नियम से परे व्यर्थ सहवास न करना, यही है लिसिट। तो नो इलिसिट सेक्स कभी भी अवैध है, विधि से विपरीत संग नहीं करना है, यही है ब्रह्मचर्य, एक नारी ब्रह्मचारी। अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी में संतुष्ट है, नियम के अनुसार रह रहा है, तो वो भी ब्रह्मचारी ही है। इस तरह से भी आप विचार करें, यदि मनुष्य 100 वर्ष जीता है तो उसके जीवन काल को 25-25 वर्ष में बांटा गया है 4 आश्रम में, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इस तरह से देखने पर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास 100 में 75 वर्ष तो उसको बिल्कुल ब्रह्मचारी रहना है, केवल 25 वर्ष के लिए गृहस्थ आश्रम में उसे एक वैदिक लाइसेंस मिलता है संतान उत्पन्न करने के लिए। कुत्ते बिल्ली जैसा केवल विषय भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करने के लिए, ये भगवान का आदेश है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतः सह, हे भरतवंशी अर्जुन, प्राणियों में जो काम वासना है और धर्म के अविरुद्ध है, धर्म के अनुकूल है, तो वो मैं हूं। इतना पवित्र है वह, संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी का संग करना, उसको भगवान कह रहा है ये मेरा स्वरूप है, बहुत पवित्र संबंध है। लेकिन उसके अतिरिक्त अपनी स्त्री से भी संग करना यह पाप है, बहुत बड़ा दुष्कर्म है, अपने शरीर के परम शक्ति का विनाश करना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन सबके लिए सब काल में बहुत आवश्यक है। तपसा ब्रह्मचर्य समेन च दमेन च, समेन का अर्थ है सम के द्वारा, मन को भगवान में रखना, मन को शांत रखना, यही है सम, उसे शांति कहते हैं। टेंशन नहीं रखना मन में, प्रसन्न रहना, समो मननिष्ठता बुद्धे, भगवान ने स्वयं कहा है बुद्धे मन निष्ठता, बुद्धि का मुझ में लगना, यही है सम, समो मननिष्ठता बुद्धे। दम इंद्रिय संयम, अब दम का अर्थ है इंद्रियों को वश में रखना, बाह्य इंद्रियों को। श्रील प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि इस जिह्वा को वश में करना चाहिए, जिह्वा को खाली नहीं छोड़ना, सब समय भगवान के नाम का उच्चारण करना, जिससे दूसरी बात न बोलने पावे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और कोई भी अनर्पित वस्तु जो भगवान को नहीं दिया गया दी गई है वो खाना नहीं। जीवा के दो काम है, बोलना और खाना। तो बोलने के लिए भगवान का नाम रखना चाहिए हमेशा, जिससे यह दूसरी बात न बोले। यदि यह खाली होगी तो बकवास करेगी ही, बोलने का इसका स्वभाव है। तो इसको इंगेज रखना भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान के कथा में। और भगवत प्रसाद में ये है दम है ना, दम दमा इंद्रिय संयम। कान को लगाना चाहिए भगवान का नाम सुनने में, भगवान की कथा सुनने में, दूसरे की शिकायत आदि कभी नहीं बोलनी चाहिए न सुननी चाहिए। इस तरह हमारा जीवन यदि संयम में होगा, कंट्रोल में, बैलेंस में, तो हम भगवान की याद कर पाएंगे। यदि इंद्रियां बिखर जाएंगी, अपनी इच्छा के अनुसार संसार में वे कार्य करेंगी, तब हमारा मन लगना भगवान में कठिन होगा और इस तरह से जीवन फेल हो जाएगा। मनुष्य शरीर मिला भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भगवान को प्राप्त न करके हम इसी संसार चक्र में फंसे रहेंगे। और कब तक रहेंगे कोई ठीक नहीं, कोई माप नहीं है कि कितना काल, कितना वर्ष। वो युग पर युग बदलेगा, एक योनि से दूसरी योनि में जाएंगे, भटकेंगे, पर अपने आप कभी संसार का जन्म मृत्यु का विनाश नहीं होगा। ये होगा करने से, भगवान की भक्ति करने से। जो भक्ति करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है, इसके अलावा जितने शरीर हैं सब भोग भोगने के लिए है। और मनुष्य से बेटर व्यक्ति भोग सकता है, दूसरे शरीर में भोगों की सुविधा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मनुष्य पर तो बहुत पाबंदी है, बहुत नियम है। तो इसलिए इस शरीर को संयम में रखकर कृष्ण का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी यही बता रहे हैं, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में यही बताए। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप भजस्व माम। भगवान कहते हैं यह शरीर लोकम यह अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा, और दुख से भरा हुआ है। इसको पा करके इमं भजस्व माम, इस शरीर को पा करके मेरी भक्ति करो। तो मैं कुछ यम की चर्चा कर रहा था, जैसा भगवान किए हैं, तो कुछ गिनाए, अहिंसा नहीं, अहिंसा सत्यम अस्तयम, सत्य बोलना, यह बहुत बड़ा गुण है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सबके विश्वास का पात्र होता है। और उसका मन भगवान में लग सकता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्ते और दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी वस्तु किसी की हो तो उसके अनुमति के बिना उसको भोगना, ये है स्ते चोरी। तो चोरी का अभाव होना चाहिए। भगवान ने इस संसार में बहुत वस्तुएं दिया है, तो जो स्वाभाविक रूप से हमको मिली है उसी में संतोष करना चाहिए। भगवान गीता में कई बार इसकी चर्चा किए हैं, संतुष्ट जेन केन चित। जेन केन चित, जो भी वस्तु मिले स्वाभाविक बिना पाप किए उसे संतोष करना चाहिए। भोजन जो मिलता है, कभी सूखा मिलेगा, रूखा मिलेगा, कभी स्वादिष्ट मिलेगा, कभी फिस्ट मिलेगा, कभी फास्ट होना पड़ेगा, जो संतुष्ट रहे। एकादशी को भक्तों को भोजन नहीं मिलता है, फिर भी भक्तजन संतुष्ट रहते हैं। एक गीत में गाया गया है कि सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। भगवान जैसे रखे रही, भगवान का नाम जपते रही, तो ये कर्म के अनुसार सब मिलता है। कभी अच्छा मिलेगा, कभी बुरा मिलेगा, कभी मान होगा, कभी अपमान होगा। अकस्मात इस संसार में ये आशा नहीं की जा सकती कि हमको सदा मान ही मिलेगा। भगवान गीता में कहते हैं तथा मानप मान है। सुख दुख में सम रहना, मान में अपमान में सम रहना। और भगवान बार बार इस बात को कहे कि और मेरी भक्ति करना, भक्ति मान में प्रियो नरह यो मद भक्त समय प्रिय। जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। और असंगम अनासक्त रहना। हरी हरी का अर्थ है लज्जा। किसमें लज्जा? बुरे कर्मों में लज्जा आनी चाहिए। बुरे कर्मों को करने में लज्जा आनी चाहिए। अपने आप कोई उसके लिए नोटिस बोर्ड नहीं होना चाहिए, यह काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, तो उन उन कामों में लज्जा आनी चाहिए। असंचय और संग्रह नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है ये बर्डन बढ़ाने के लिए नहीं। संचय एक बर्डन है, अधिक पैसा रखना, अधिक घर रखना, अधिक कपड़ा रखना, अधिक वस्तुएं रखना, ये सब आदमी को चिंता में डालती हैं। अधिक पैसा रखने वाला व्यक्ति चिंता में रहता है सरकार न ले ले या कोई लुटेरा न ले ले, परिवार के लोग व्यर्थ खर्च न कर दें, ये चिंता रहती है। संचय नहीं करना, ये भगवान बताए हैं अपने मुख से। संचय नहीं करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। एक भक्त पूछा हमसे कि कितने को संचय कहेंगे। जो आज हमको खाना है, पीना है, कपड़ा पहनना है, कुछ घूमना फिरना है, मोटरसाइकिल है, इसके अलावा और बढ़ाने लगे कि हमको ज्यादा पैसा चाहिए, भविष्य की चिंता हो, आगे कैसे चलेगा खर्च, इसके लिए भगवान पर डिपेंड करना चाहिए। जो अब तक पाला पोसा है, गर्भ में बचा करके लाया, खिलाया पिलाया, वो भगवान जगन्नाथ अब सो जाने वाले नहीं है। या ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और हमारी कौन खबर लेगा, अब तक तो किए, आगे कौन करेगा, आगे भी वही रहेंगे, वही सब करते हैं। ये सोच करके व्यर्थ संग्रह नहीं करना चाहिए। आस्तिक्यम वर ब्रह्मचर्यम च, और आस्तिक्यम भगवान में विश्वास रखना चाहिए, इसको आस्तिकता कहते हैं। वास्तविक आस्तिकता है वेद में विश्वास, भगवत गीता में विश्वास, श्रीमद् भागवतम में विश्वास, ये भगवान का वचन है। भगवान का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम भगवान का स्वरूप है। ये वेद शास्त्र हमारे हित के लिए बनाए गए, उनमें श्रद्धा रखना। मौनम स्थैर्यम, मौनम का अर्थ है यथार्थ वचन बोलना। मौन का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं बोलना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा बोलना, यही है मौन। और संसार का वर्णन नहीं सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। मनुष्य जहां जन्म लेता है, जिस समाज में रहता है, तो वहीं की चर्चा करता रहता है। यह मौन के विरुद्ध है, हमेशा बकबक बोलता रहता है। यदि आप विदेश में मान लीजिए जन्म लिए हैं, तो वहीं की बातें हमेशा चलती। अलग अलग शहर में अलग अलग अखबार निकलते हैं, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में वहीं की चर्चा भरी रहती है। कहाँ लूटपाट हुई, कहाँ सस्ती वस्तु मिल रही है, किस दुकान में, किस स्टोर में, बस यही सब चर्चा। घर घर में टीवी लगाए हैं, टीवी में यही देखते हैं, ये वस्तु कम दाम में मिलेगी, इसको खरीदना चाहिए। केवल संसार का समाचार, तो इन सब बातों को बोलना यह मौन के विरुद्ध है। मौन होना चाहिए, भगवान का नाम बोलना, भगवान की गुण कथा बोलना, भगवान कितने सुंदर हैं, कितने दयालु हैं, भक्तों पर कितना उनका प्रेम है, ये सब बातें हैं शास्त्रों में। और अभयम, कभी भय नहीं करना चाहिए, हमारा जीवन क्या होगा, संसार कैसे चलेगा, भगवान है चलाने वाले, वही सब नियम बनाए हैं। अतः किसी बात का भय नहीं करना चाहिए भक्त को। अभयम, भयहीन होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, अध्यस्ता सर्वभूता नाम, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्राणी से द्वेष न करे। अद्वेष्टा, किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करना चाहिए। एक कुत्ते से, मच्छर से, खटमल से, किसी से द्वेष नहीं। भगवान कहते हैं मैत्रह करूं ये वच, बल्कि सबके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए और दया करनी चाहिए। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमि, भगवान गीता में कह रहा है कि क्षमि होना चाहिए, भक्त को क्षमा करना चाहिए, सहन करना चाहिए। मन में भी किसी के प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए, वाणी से और हाथ से क्रोध आदि प्रकट करना तो दूर की बात है, मन में भी नहीं बैलेंस होना चाहिए। किसी के प्रति क्रोध हो जाना यह क्षमा नहीं है, क्षमी होना चाहिए। और यही सोचना चाहिए कि ये हमको किसी के द्वारा जो दुख हो रहा है यह भगवान की दया है, हमारे भाग्य में बहुत बड़ा दुख लिखा था लेकिन इतना ही कम दुख मुझको मिला, यह सोच करके प्रसन्न होना चाहिए। हमारा अपराध इतना था कि हमारा गला कटना चाहिए लेकिन भगवान केवल उंगली काट करके छोड़ दिए, ये कृपा है उनकी। तथा किसी के द्वारा यदि कोई सताया जाता है तो यही भावना करनी चाहिए कि हमको बहुत ज्यादा दुख भोगना था, भगवान ने इतना ही भोगा करके माफ कर दिया। तो सबके प्रति मित्र का भाव होना चाहिए। इस प्रकार से हम इस संसार में जीवन धारण करेंगे, जिएंगे, तो आसानी से भगवत पथ पर बढ़ते रहेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के धाम में चले जाना यही असली मुक्ति है, और उनका पार्षद बन करके, उनका सेवक बन करके चले जाना, वैकुंठ चले जाना, फिर इस संसार में नहीं रहना। यहां तो केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि भरा हुआ है, तो हमेशा याद रहे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, किस लिए यह शरीर मिला है। जो काम करने के लिए मिला है वो काम कर लेना चाहिए और भी जल्दी करना चाहिए। समय रोज रोज बीत रहा है, प्रत्येक क्षण बीत रहा है, और बीता हुआ समय फिर आएगा नहीं, तो समय को व्यर्थ नहीं बीतने देना चाहिए, समय को सार्थक बिताना चाहिए। और सार्थक कैसे माना जाएगा, जब समय बीत रहा हो और भगवान का नाम भी चलता है जीभ पर या कान में, सुनते रहे भगवान का नाम, भगवान की बातें सुनते रहे, कथा सुनते रहे और जीभ से भगवान का नाम बोलते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। इस तरह से हमारा जीवन सार्थक बीतेगा, फिर हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। भगवान बार बार इस बात को कहें, माम पेट पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतम। सबसे बड़ी सिद्धि है भगवान के धाम में उनका पार्षद बनकर चले जाना, अतः सबसे बड़ा बुद्धिमान वही है जो भगवान का नाम लेता है और भगवान के पास जाने के लिए तैयार है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।
हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्रिश्चियन धर्म में जो है वो वहां लिखा है बाइबल में कि तुम जीव हत्या नहीं करेगा, और वो लोग स्वयं इतनी जीव हत्या कर रहे हैं, और वो ये कोटेशन देते हैं कि स्वयं जीसस क्राइस्ट जो है वो भी मछली खाते थे, तो उसके बारे में उन लोगों को किस तरह हम समझा सकते हैं?
हम लोग गीता से बात कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन और ये सब वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है, इसलिए उसको यहां मत रखिए। भगवत गीता से बात कीजिए, भागवतम से, या दुनिया भर का ठेका नहीं लिए हैं कि ये कैसे कहा ऐसे कहा, कहते रहे। हम लोग एक ट्रैक पर चल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की शरण में हैं, अतः वो जो कहते हैं वो प्रमाण है, और किसी की बात तब प्रमाण मानी जाएगी जब प्रभुपाद के अनुसार है, अगर नहीं है तो हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं।
महाराज, कुछ भक्तों का सोचना है और हम भी अनुभव कर रहे हैं, ये अपने जो श्लोक का ऊपर व्याख्या किया है वो हो सकता है वो तात्कालिक है, लेकिन इसी आजकल का जो स्थिति है उस स्थिति में उस नियम को पालन करके जीवन निभाना ये एक कष्टदायक होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
वही बताया गया है यहाँ पूरे अध्याय में, नारायण नाम जपा बोला पुत्र के नाम को अजामिल और मुक्त हो गया, तो भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है, ये करना चाहिए, कोई बात नहीं। और सब साधन कठिन है तो करने के लिए नहीं कहते, सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं मना किए, भगवान का नाम सरल है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा युवक वृद्ध कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में, ये उपाय बताया गया है समग्र मानवों के स्थिति को, इस काल के स्थिति को देख करके बताया गया है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हम लोग और सब बातें जम नियम के सुनते हैं, जितना कर सके करें, लेकिन वास्तविक भरोसा वास्तविक साधन तो यही भगवान का नाम है, अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत प्रबल साधन है यह।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज भारत संसार में देखा जाता है कि कहीं पर भी लोग जाते हैं तो वहां का एक निश्चित परिधान होता है, यूनिफॉर्म होती है, बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बड़े बड़े होटलों में जब अश्लील नृत्य करने जाते हैं तो वहां भी एक यूनिफॉर्म लोग पहन के जाते हैं, तो उस संस्था का उस क्षेत्र में वहां नियंत्रण है, तो हम संसार को तो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे मंदिरों में जो लोग दर्शन करने आते हैं, खासकर भारतीय लोग जो आते हैं, उनको निश्चित रूप से पता है कि मंदिर में जाने के समय एक निश्चित परिधान या निश्चित एक मर्यादा में हमको जाना चाहिए, लेकिन लोग आ जाते हैं पिकनिक के मूड में घूमते फिरते अश्लील वस्त्र पहन करके, तो संसार में तो उनको नहीं रोका जा सकता, लेकिन मंदिर क्षेत्र में क्या हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको थोड़ा नियंत्रित करें, और यद्यपि वो दर्शन के लिए आया है लेकिन चाहे वो जानबूझ करके या अनजाने में वो गलत परिधान पहन के आया है, लेकिन वो मंदिर में लोगों के मन को ये करता है, तो क्या उनको रोकना अनुचित है या ऐसा डिमांड करना कि आप लोग सही सही कपड़े पहन के आइए।
हाँ, शिक्षा देना भक्तों का काम है। जैसे प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया धोती पहनने के लिए, तिलक लगाने के लिए और सब केस मुड़ाने के लिए भक्तों को, तो इसी तरह से भक्तों का एक कर्तव्य है कि वे शिक्षा दें नम्र भाषा में, आलोचना पूर्वक नहीं, मधुर वचन से, शास्त्रों के उदाहरण से समझाएं। धीरे धीरे प्रचार हो जाएगा तो लोग नियमों के अनुसार आएंगे, उचित परिवेश में आएंगे।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए। बहुत ही अच्छा आज का कक्षा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा। मेरी थोड़ी सी जस्ट जिज्ञासा भी है, और जैसे बोलते हैं एक ग्रंथ में पढ़ रहा था कि कर्मणा मनुषा वाचा सर्ववस्था सुसर्वदा सर्वत्र मैथुनी त्यागो ब्रह्मचर्य प्रपच्यते। तो जैसे कि देखा जाता है कि काम काज सेवा है भगवान की, हमारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित है, और चाणक्य पंडित जी भी बोलते हैं कि मातृवत परदारेषु। तो सेवा के माध्यम से कई लोगों से मिलना होता है सेवा भाव से प्रचार के क्षेत्र में। तो क्या ये संभव है कि अगर परदारेषु मातृ रूप में उसको अगर हर समय देखा जाए, उस रूप से उनकी श्रद्धा सम्मान किया जाए, तो हम अपनी ब्रह्मचर्य का पालन अखंड रख सकते हैं?
जो बातें कही गई हैं वे तो हमारे हित के लिए कही गई हैं। दूसरे की स्त्रियों को अपनी माता के समान समझे, कम से कम बोली में तो कहते ही हैं माता जी, कहते हैं ना। तो मन में भी मानना चाहिए माता जी। एक बार मैं पटना गया था तो वहां लालू प्रसाद जी के घर में चक गया। वहां एक डीटी है, उनकी पत्नी पूजा करती है। तो पटना के भक्त लोग उसको माताजी कहते थे। तो लालू प्रसाद कहते हैं, लव माताजी हो गल्लू, सब तुहार बच्चा है। तो बड़ी प्रसन्न हुई माताजी, और लालू प्रसाद जी बहुत खुश थे कि हमारी पत्नी को सब लोग माताजी कहते हैं, इस्कान के सब भक्त। तो अच्छा है ना, माताजी कहना, माताजी मानना। अगर आप दूसरे की स्त्री को माता मान रहे हैं तो आपको घाटा तो नहीं है, हमेशा लाभ है। माताजी खिलाएगी, माताजी कुछ पैसा देगी, माता मानने से लाभ ही लाभ है, और आध्यात्मिक लाभ तो है ही। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, और दूसरे का धन ढेला के समान, पत्थर के समान समझे। ये सब नीतियां हैं, बड़े बड़े लोग बताए हैं, जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं। चाणक्य पंडित जी के श्लोक श्रील प्रभुपाद जी भी बार बार कोट करते थे। बड़ी श्रद्धा से उन वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए।
हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब अर्जुन जी को भगवान उपदेश दिए भगवद गीता के, तो भगवद गीता के उपदेश सुनने के पश्चात अर्जुन जी का साक्षात्कार हुआ, दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, और अर्जुन जी कहते हैं कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्पश्चात मैं आ चुका। तो ये सब सुनने के पश्चात, सब दिव्य ज्ञान उदय होने के पश्चात, फिर जब अभिमन्यु का बद्ध होते हैं, तो फिर अर्जुन जी फिर इस प्रकार से कैसे मोहित हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम अगर ये नहीं करे तो आग जला के उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से कैसे मोहित हो सकते हैं जब भगवान उपस्थित है साक्षात और इतना दिव्य ज्ञान सुनने के पश्चात भी।
तो फिर भगवान वहां थे ना, उपदेश फिर हुआ। ऐसा से ऐसे सिद्ध है कि बारंबार गीता सुनने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। अर्जुन को फिर मोह हो गया तो फिर वे सुने भगवान से, तो ठीक हो गए। तो ये तो जीव की स्थिति है, भगवान उनके पास थे तो उनको मोह हो गया। हम लोग तो बहुत दूर हैं भगवान से, हृदय में हैं लेकिन छिपे हुए हैं, तो बार बार उनकी वाणी पढ़नी चाहिए। गीता वो बाहर है, और सबसे अच्छी बात है कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान पुरुष उस पर टीका लिखे, उसको स्पष्ट किए। हम लोग स्वयं अर्थ नहीं समझ सकते थे तो प्रभुपाद जी ने अर्थ समझाया है। अपना कर्तव्य है रेगुलर पढ़ना और सुनना और इस ज्ञान को बांटना, भगवत गीता को बांटना जनता में। हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। हमें भी मोह हो जाएगा, अज्ञान घेरेगा, लेकिन बहुत बड़ा संबल है भगवत गीता, एज इट इज है हमारे पास, बहुत बड़ा भरोसा है।
महाराज जी, हम ज्ञानी को तीन प्रकार बार बार समझते साहित्य के माध्यम से। एक तो भगवत ज्ञानी है, एक जिसने वेद का ज्ञान कांड का अभ्यास करके जो ज्ञानी बना है, और एक स्पेक्युलेटिव नॉलेज वाला ज्ञानी। तो भगवान जब भी बोलते कि चार किस्म के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, तो ये तीन प्रकार के ज्ञानी में से वो कौन से ज्ञानी को आने का बताते हैं?
ज्ञानी भगवान स्वयं का है, एक भक्ति विशिष्य थे। एक भक्ति मतलब अनन्य भक्ति जिसमें है, ऐसा ज्ञानी श्रेष्ठ है भक्तों में। तो ज्ञानी का अर्थ है, भगवान अपने विषय में ही बोल रहे हैं कि हमारे विषय में जिसको ज्ञान है, अपने साथ संबंध का ज्ञान सब कुछ है, तो मुझको ठीक से जानता है। और दूसरे तीन प्रकार के हैं, कोई फैसिलिटी चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, कोई ज्ञान चाहते हैं, जिज्ञासा रहती है, और कोई आर्त रहते हैं, कोई दुख से ग्रस्त रहते हैं, तो दुख से मुक्त होने के लिए मुझको पुकारते हैं, मेरा भजन करते हैं। लेकिन भगवान चारों को उदारा सर्व एवैते, सभी उदार हैं, महान हैं। मांगने जो आता है वो भी उदार है, जो आरती है, जो आर्त है, वो भी उदार है, और ज्ञानी तो उदार है ही। ज्ञानी तात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। तो आपका प्रश्न क्या था?
प्रश्न ये है कि जो ज्ञान कांड का अभ्यास करके ज्ञानी बना है वेद का, उसको भी ज्ञानी कहा जाता है ना?
नहीं, वो ज्ञानी नहीं। भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान को समझ गया कि यही परम ईश्वर हैं, हमारे परम सुहृद हैं, सबके सुहृद हैं। इस प्रकार से जो भगवान में रचा पचा है, एक भक्ति, अनन्य भक्ति है उसकी, वो ज्ञानी। केवल शास्त्रों को पढ़ करके कुछ जानकारी हो गई, इसी को ज्ञान नहीं कहा गया।
तो कर्मी ज्ञानी और योगी जो तीन है, उसका जो ज्ञानी है वो प्रिय नहीं है भगवान? कर्मी ज्ञानी और योगी में से वो
भगवान हमेशा प्रिय जो शब्द का प्रयोग किया है तो यही कहते हैं, यो मद भक्त समय प्रिय, जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। ये 12वें अध्याय में कहे हैं ना, 13वें श्लोक से लेकर के 19वें तक। जय श्री प्रभुपाद।